दिन भर 28 मई दिन सोमवार सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। 14 जगहों पर उपचुनाव के लिए डाले गए वोट, कैराना में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप।
बड़ी हुआ है लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई अधिकारी हमारी सूट लेने नहीं आया।
किसानों के मुद्दों पर कई मांगों के साथ राष्ट्रपति से मिले कार्यकर्ता योगेंद्र यादव।
इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की नीतियों ने किसान को अस्पताल में पहुंचा दिया। बीजेपी की उपलब्धि ये है कि उसने जनरल वार्ड से निकाल के आईसीयू के अंदर डाल दिया।
और चीयरलीडर्स को सुनिएगा, उनकी जिंदगी को और करीब से देखिएगा।
I am from Australia. I have come from Manchester in the UK.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। आज भारत में 10 राज्यों में 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के तहत वोट डाले गए। इस बीच कुछ जगहों से ईवीएम खराब होने की भी शिकायतें आई। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में इसे लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। तमिलनाडु सरकार ने देश के सबसे बड़े तांबा खनन संयंत्र को स्थायी तौर पर बंद करने का आदेश दिया है। कुछ दिन पहले तूतीकोरिन में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस संयंत्र को सील करने के आदेश दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि संयंत्र के कारण आसपास का भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा था, जिससे कैंसर और अन्य बीमारियां फैल रही थीं। मगर इस प्लांट के स्वामित्व वाली ब्रिटेन की मल्टीनेशनल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज का कहना है कि इस बारे में गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। इटली में पिछले 3 महीनों से जारी राजनीतिक संकट और गहरा गया है। राष्ट्रपति सर्जियो मातरेला ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़े रहे एक अर्थशास्त्री को अस्थायी प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार बनाने के लिए कहा है, जिन्हें बाद में बहुमत साबित करना होगा। किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात की तैयारी के लिए उत्तर कोरिया और अमेरिका के अधिकारी लगातार दूसरे दिन वार्ता कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के राजदूत रहे सुंग किम अमेरिकी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि उत्तर कोरिया की टीम का नेतृत्व वहां के उप विदेश मंत्री चोई सुन हुई कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने हाल ही में किम जोंग उन के साथ हुई मुलाकात को लेकर कहा, हाल ही में हुए कोरियाई सम्मेलन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि नेताओं ने आसानी से संपर्क किया, आसानी से मुलाकात तय हुई, आसानी से वो मिले और आसानी से जरूरी मामलों पर बात हुई। किसी तरह की पेचीदा प्रक्रिया या औपचारिकता नहीं थी, सामान्य मुलाकात हुई। ये थे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के शब्द। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा है कि राजधानी कुआलालंपुर और पड़ोसी सिंगापुर के बीच तेज रफ्तार वाली रेल चलाने की योजना रद्द की जा रही है। उन्होंने ब्रितानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए सरकारी खर्च घटाने के इरादे से यह कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रेल योजना से मलेशिया पर लगभग $3 बिलियन का खर्च बढ़ेगा, मगर कमाई कुछ नहीं होगी। पेरिस में चौथी मंजिल से लटके बच्चे को बचाने वाले माली के एक प्रवासी को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नागरिकता का प्रस्ताव दिया है। मैक्रों ने 22 साल के ममूदू गैसामा को मेडल दिया और कहा कि उन्हें एक फायर फाइटर बनाया जाएगा। गैसामा लीबिया होते हुए पिछले साल ही फ्रांस आए थे, मगर पेरिस की डेप्यूटी मेयर सेइला ब्लुएल ने कहा कि गैसामा ने बेशक शानदार काम किया है, मगर प्रवासियों की समस्या अभी भी फ्रांस और पूरी दुनिया के लिए वैसी ही बनी हुई है।
Definitely what he did is just amazing and says a lot about solidarity and how
इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो किया वो कमाल का था। ये दिखाता है कि कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, मगर इससे पूरी दुनिया की स्थिति का पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग फ्रांस आ रहे हैं, ये भी एक सच है। यहाँ पेरिस में ही नहीं बल्कि फ्रांस के कई छोटे गाँवों में भी, पूरे यूरोप की तरह ही फ्रांस में भी ये विषय चर्चा में बना हुआ है। ये थे पेरिस की डेप्यूटी मेयर सेइला ब्लुएल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण इथियोपिया में कई घंटों तक चली भारी बारिश के बाद आई कीचड़ वाली बाढ़ और भूस्खलन के कारण 33 लोगों की मौत हो गई है। फना ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेट के मुताबिक मरने वालों में ज्यादा संख्या महिलाओं की है। इस आपदा के कारण पशुधन को भी नुकसान पहुंचा है। ऑस्ट्रिया की दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार ने विदेशियों और शरणार्थियों को मिलने वाली लाभ राशि में कटौती करने की योजना बनाई है, ताकि और लोगों को उनके देश में आने से हतोत्साहित किया जाए। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। देश में 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हुए। 2019 में होने वाले आम चुनावों से पहले हर चुनाव थोड़ा अतिरिक्त अहम इसलिए भी हो गया है क्योंकि बीते कुछ महीनों में भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष बनाने की कोशिशें हुई हैं। आज भी जहां वोट डाले गए उनमें कई सीटों पर विपक्षी दल साथ साथ या समझौते के तहत लड़े। दिल्ली से फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के कैराना के अलावा महाराष्ट्र के भंडारा, गोंडिया और पालघर में भी लोकसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में वोट डाले गए। इन सभी सीटों पर लगभग सभी विपक्षी दल एक ओर हैं तो बीजेपी दूसरी तरफ। महाराष्ट्र में शायद पिछले 25 साल में यह पहली बार है जब पुराने गठबंधन साथी बीजेपी और शिवसेना दो अलग अलग खेमों में दिख रहे हैं। भंडारा गोंडिया सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के हेमंत पटेल और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मधुकर राव कुकड़े में है। इस सीट पर कांग्रेस और सेना ने अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे हैं। बीजेपी सांसद की मौत के चलते हो रहे पालघर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी और शिवसेना दोनों आमने सामने हैं, हालांकि यहां दूसरे दलों के उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं। नागालैंड की एक लोकसभा सीट पर भी चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। इस बीच ये आरोप लगे कि भंडारा गोंडिया में इस्तेमाल हो रहे 25% ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना था कि ये संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। हालांकि 35 पोलिंग बूथ पर वोटिंग रद्द करने पड़े। पालघर उपचुनाव के लिए बीजेपी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ले गई थी, तो क्या फायदा मिल सकता है पार्टी को इसका? इस पर एक वोटर नीलेश वानखेड़े कहते हैं,
थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ज्यादा हुआ होगा वो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन वो जो यूपी साइडर लोग है उनको अट्रैक्ट करने के लिए शायद उन्होंने वो आदित्यनाथ लाया था।
केरल के चेंगनूर, उत्तर प्रदेश के नूरपुर, कर्नाटक के आरआर नगर, मेघालय के अम्पाती, झारखंड के सीलिया और गोमिया, बिहार के जोकीहाट, पश्चिम बंगाल के महेशताला, पंजाब के सहकोट और उत्तराखंड के थराली में विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए जिनके लिए वोटरों ने अपने अधिकार का प्रयोग किया, लेकिन इनमें से कई जगहों खासतौर पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग मशीन को लेकर शिकायतें आईं। दोपहर बाद इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव और राष्ट्रीय लोक दल के नेता अजीत सिंह दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले। बैठक से बाहर आकर राम गोपाल यादव ने कहा,
यही मांग की है कि 1.5 घंटे से ज्यादा अगर बंद रहा है तो कल कराएं और कम रहा है तो उन्हें टाइम दें। ये ऐसा है कि रूरल इलाके में ज्यादा हुई है।
चुनाव आयोग ने माना है कि गर्मी की वजह से कई ईवीएम मशीनों में दिक्कत आई है। हालांकि ईवीएम की शिकायतें विपक्षी दल पहले भी करते रहे हैं और जिससे बीजेपी हमेशा इनकार करती रही है और कहती रही है कि जो हारती है वो राजनीतिक दल ऐसा कहता है, लेकिन इस बार वोटिंग मशीन में खराबी की शिकायत कई बीजेपी नेताओं की तरफ से भी आ रही है।
फैसल मोहम्मद अली से रिपोर्ट सुन रहे थे आप। इन उपचुनावों में सबसे ज्यादा नजरें हैं उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर, जो भाजपा सांसद हुकुम सिंह के निधन से खाली हुई थी। कैराना का उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा ने यहां से हिंदुओं के पलायन का विवादित दावा किया था, और इसलिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां भाजपा के खिलाफ सपा, कांग्रेस और बसपा के समर्थन से रालोद उम्मीदवार मैदान में हैं। कैराना से लौटकर समीर आत्मज मिश्र ने ये रिपोर्ट तैयार की है।
उपचुनाव होने के बावजूद मतदाताओं में सुबह से ही उत्साह दिख रहा था, लेकिन मतदान शुरू हुए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक दो नहीं बल्कि दर्जनों जगहों से ईवीएम मशीनों में खराबी की शिकायतें आ रही
हैं। बंद पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई अधिकारी हमारी सूद लेने नहीं आया हुआ।
इधर मौसम का तापमान बढ़ रहा था तो मशीनों के खराब होने के चलते मतदान करने वालों की लाइनें भी लंबी हो रही थी। आखिरकार मतदाताओं का धैर्य जवाब देने लगा।
बहुत देर से 2 घंटे सारे हो गए, वो मशीन खराब बता रहे हैं, यहाँ रोजे में परेशान हो रहे हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, बट डालें तो जब ही जब वो मशीन ही ठीक हो।
वोट नहीं गिरे जो कह रहे मशीन खराब होगी, 2 घंटे हो गए बैठो बैठो यहाँ से रोजे से परेशान हो रहे।
कुछ जगहों पर लोग परेशान होकर बिना वोट डाले ही वापस चले गए तो कुछ लोग अधिकारियों से उलझते दिखे। 3 घंटे के भीतर मामला इतना तूल पकड़ गया कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने आनन फानन में लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई।
ऐसा खतरनाक चुनाव पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है जब सत्तारूढ़ दल के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, और आज तो तब हद हो गई जब दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से, नूरपुर से भी और कैराना से भी ये रिपोर्ट आ गई है। नूरपुर में 305 मतदान केंद्रों में से लगभग 140 ईवीएम खराब है, उनमें गड़बड़ी की गई है 140। वो खराब इसलिए की गई है कि गड़बड़ी की गई है।
उसके बाद समाजवादी पार्टी और लोकदल का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल शिकायत लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा। मशीनों में खराबी की बात चुनाव आयोग ने भी स्वीकारी और उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह ने कहा कि जो मशीनें खराब हैं उन्हें बदला जा रहा है। सहारनपुर के जिलाधिकारी KP पांडे बोले,
ईवीएम में शिकायतें नहीं है, वीवीपैट में खराबी हो रही है, वीवीपैट में खराबी की शिकायतें आ रही हैं। हमने इंजीनियर्स को और अपने एसडीएम्स को लगा रखा, जितना हमारे पास रिजर्व है उनसे रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं और इंजीनियर्स जाकर उसको ठीक करके दोबारा उसमें पोलिंग कराने का प्रयास कर रहे हैं, ये अभी चल रहा है।
लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती गई। टीवी चैनलों पर बीजेपी के नेता पहले तो ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहे थे और विपक्षी दलों को कोस रहे थे, लेकिन जब बात अपने पर आई तो वो भी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे। कैराना में बीजेपी के उम्मीदवार मृगांका सिंह ने मशीनों के खराब होने की बात खुद स्वीकार की।
मतदाता जो है वो बहुत ही आक्रोशित है ईवीएम की खराबी और ईवीएम का ना चलने के कारण, और बहुत ही रोष था सपोर्टर्स में भी कि वो 3-3 घंटे लाइन में लगे रहे, उसके बावजूद वो अपना वोट नहीं दे पा रहे।
बहरहाल इन सब के बीच शिकायत लेकर पहुंचे राजनीतिक दलों के नेताओं को मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वरलू ने आश्वासन दिया कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित नहीं रहेगा और जरूरत पड़ी तो मतदान दोबारा भी कराए जाएंगे।
सबसे वोट कराना तो दैट इज मैंडेटरी प्रोविजन, 12 बज जाए 10 बज जाए उसका टाइम नहीं, 1 ही घंटे में कराना।
समीर आत्मज मिश्र, BBC कैराना।
दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं पर एक ज्ञापन सौंप कर मदद मांगी। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी बनाने, किसानों का फसल का कर्ज एकमुश्त माफ करने और किसानों के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने दिल्ली में इस समिति से जुड़े स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव, भाकपा नेता अतुल अंजान और इस समिति के अध्यक्ष VM सिंह से बात की और सबसे पहले VM सिंह से पूछा कि 4 साल पूरे होने के विज्ञापन में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए इतना काम करने का दावा किया है, फिर किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति के यहां गुहार लगाने की जरूरत क्यों पड़ी?
4 साल हो गए, फसल बीमा के ऊपर ढंडोरा पीटा गया पूरा। उस साल जिस साल इन्हें ढंडोरा पीटा, 23,000 करोड़ का प्रीमियम ले रहे हैं, 9,000 करोड़ दे रहे हैं, 14,000 करोड़ कमा रहे हैं, और उसको कॉर्पोरेट सेक्टर की योजना बोलेंगे या किसानों की बोलेंगे? वो तब जब आधे देश के अंदर बाढ़ आई और आधे देश के अंदर सूखा पड़ा, 3.5 लाख किसान आत्महत्या किया है 15 साल में, और इनके 4 साल में 50% जितना पहले करते, हमने राष्ट्रपति को लिख के दिया है ये, जितना पहले आत्महत्या होती थी उससे 50% और बढ़ गई आत्महत्या। यही कृषि प्रधान देश की खासियत हो सकती है।
आपसे बात करते हैं योगेंद्र जी, कह रहे हैं कि किसानों की जो आत्महत्या का प्रतिशत है 52% बढ़ गया, लेकिन साथ साथ ये भी कि सरकार का दावा है कि बहुत सारे किसानों को चेक मिले हैं, मुआवजे के चेक जो है, जो फसल बीमा की जो बात हो रही है उसके बारे में।
देखिए, फसल बीमा योजना इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करता हूँ। फ्रॉड क्यों कहता हूँ? जब फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंट्रोड्यूस हुई, उससे पहले इस देश में फसल बीमा था। BJP ने कहा, सही कहा, कि ये बड़ी बेकार स्कीम है, इसके अंदर केवल 23% किसानों को फ़ायदा मिलता है, हम एक नई स्कीम लेके आएंगे, इस फ्रॉड को बंद करेंगे। ठीक है, बंद किया, नई स्कीम लेके आए, खर्चा पहले 3,000 करोड़ हो रहा था, अब बढ़ा के 13,000 करोड़ कर दिया। अब बताइए कितने लोगों को फ़ायदा मिला? आंकड़े आए, पता लगा, पहले साल में 23% से बढ़ के 28% हुआ, लोगों ने कहा चलिए कुछ फ़ायदा हुआ। दूसरे साल में वो 28 से घट के 24 आ गया है, तो खर्चा आपने 3,000 से 13,000 करोड़ कर दिया, कवरेज 23% से बढ़ के 24% हुआ है, ये इसकी हकीकत है। और जैसा VM सिंह ने कहा, 23,000 करोड़ रुपया कुल मिला के इस पर अब तक खर्च हुआ है, और किसानों को टोटल क्लेम्स उनके जो पेंडिंग है वो भी मान लें तो 13,000 करोड़ के क्लेम है, यानी कि एक साल में 10,000 करोड़ रुपये का मुनाफा बीमा कंपनियों को हुआ है। तो ये किसान का बीमा नहीं है, कंपनियों का बीमा है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की नीतियों ने किसान को अस्पताल में पहुंचा दिया, मरीज बना दिया, अस्पताल में पहुंचा दिया। BJP की उपलब्धि ये है कि उसने जनरल वार्ड से निकाल के ICU के अंदर डाल दिया किसान को, और आज हम राष्ट्रपति के पास गए ये कहने के लिए कि भाई उसे 2 इंजेक्शन तो दे दीजिए। फसल का न्यूनतम मूल्य जो मिलना चाहिए वो तो कम से कम एक कानूनी गारंटी बना दीजिए। और दूसरी चीज ये कि इस देश में किसान पे जितना भी फसल का कर्ज है उसे एक झटके बिना शर्त एक बार में उसको उससे मुक्त कीजिए।
सिस्टमेटिक लड़ाई हमारी यह है कि बिल्स आए, बिल्स पास हों, आज नहीं पास होंगे अगली सरकार आए वो पास करे, इतना दबाव डाले हम उनके ऊपर। अगर वाजपेयी जी इतने सेंसिटिव थे कि तीन किसानों के मरने के बाद उन्होंने गन्ने के इशू पर दिसंबर 2003 में एक स्पेशल सेशन लेके आए थे, तो आज तो 3.5 लाख आदमी मर चुके हैं भाई। आज तो इनकी आत्मा को जागना चाहिए और स्पेशल सेशन लाएं और किसानों को बचाने का काम करें।
अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन समिति के सदस्यों से बात कर रहे थे फैसल मोहम्मद अली।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। यूरोपीय देश इटली बीते 3 महीनों से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। वहां एक तरफ राष्ट्रपति सर्जियो मात्रेला के खिलाफ महाभियोग लाने की अपील की जा रही है, वहीं राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़े रहे एक अर्थशास्त्री को अस्थायी प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार बनाने के लिए कहा है, लेकिन उनके सामने चुनौती अब बहुमत साबित करने की है। ब्यौरा सुनिए गुरप्रीत कौर से।
मार्च में जब इटली के लोगों ने मतदान किया था तो उन्हें उम्मीद थी कि लंबी राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म होगा और स्थिर सरकार बनेगी, लेकिन अब तक इटली में सरकार का गठन ही नहीं हो पाया है। दरअसल वहां हुए चुनावों में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद जनवादी पार्टी फाइव स्टार मूवमेंट ने राइट विंग लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी इन कोशिशों को राष्ट्रपति सर्जियो मातरेला से रविवार को तगड़ा झटका लगा। गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए ग्यूसेपे कोंटे ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और अपने मंत्रिमंडल के लिए अपनी पसंद के नामों की लिस्ट सौंपी, लेकिन राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री के लिए दिए गए नाम को नामंजूर कर दिया। इस पद के लिए पाओलो सवाना का नाम दिया गया था, जो यूरो को मुद्रा के तौर पर छोड़ने के पक्षधर हैं, जबकि राष्ट्रपति ऐसा नहीं चाहते। इस बारे में राष्ट्रपति सर्जियो मातरेला ने कहा,
वित्त मंत्री के नाम को छोड़कर मैं सभी मंत्रियों के नाम पर सहमत था। वित्त मंत्री के पद के लिए हम जिस भी नाम को चुनते हैं उससे एक सीधा संदेश जाता है। वो संदेश या तो विश्वास पैदा करता है या हमारे आर्थिक बाजार के लिए खतरे की घंटी बजा देता है।
राष्ट्रपति के इस कदम से सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले गठबंधन में शामिल पार्टियों में गुस्सा है। फाइव स्टार मूवमेंट के नेता ग्यूसेपे कोंटे ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही है। लीग के नेता मार्टियो सल्विनी ने कहा कि राष्ट्रपति के फैसले ने लोकतंत्र का अपमान किया है।
उन्होंने कहा, नहीं, कोई सरकार नहीं बनेगी। मैंने पूछा, क्या ये लोकतंत्र है? इटली में इटली के लोगों का फैसला चलेगा या जर्मनी या फ्रांस के लोगों का? मेरे लिए ये सब हैरानी भरा है। मुझे अफसोस है, मैंने बहुत कुछ खोया। उन्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था।
अब राष्ट्रपति सर्जियो मातरेला ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़े रहे एक अर्थशास्त्री कार्लो कोटारेली को सरकार बनाने का न्योता दिया है। कार्लो ने यह न्योता स्वीकार कर लिया है और उन्हें जल्द ही बहुमत साबित करना होगा। अगर वो बहुमत साबित कर देते हैं तो अगले चुनाव होने तक अंतरिम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अगर वो नाकाम रहते हैं तो इटली में अगस्त के बाद एक बार फिर चुनाव होंगे। इस उम्मीद के साथ कि इटली में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता खत्म हो।
गुरप्रीत कौर से ब्यौरा सुन रहे थे आप। अब आगे बढ़ते हैं। बल्लेबाज चौका मारता है, दर्शक शोर मचाते हैं और मैदान के कोने में अपने लिए तय मंच पर खड़ी वे लड़कियां नाचती हैं, जश्न मनाती हैं। शायद चीयर लीडर्स के बारे में बहुत सारे लोग इतना ही जानते हों, लेकिन उनकी ज़िंदगी के दूसरे पहलू भी हैं। उनके भीतर प्रतिभा का कौन सा आकाश पसरा है, कौन से सपने सजे हैं और कौन सा असंतोष भरा है, सूर्यांशी पांडे की इस रिपोर्ट में सुनिए।
That is Yuvraj Singh at his imperious best.
वो बॉल का बल्ले से लगना, वो स्टेडियम का खिलाड़ी के नाम से गूंजना, क्रिकेट का ये शोर लगभग हर टूर्नामेंट सीरीज और मैच में एक जैसा रहता है, लेकिन आईपीएल का अंदाज जुदा है क्योंकि इसमें लग जाता है ग्लैमर का तड़का।
That's right.
यानी कि चीयर लीडर्स और इस ग्लैमर के बारे में बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इनको जानने की कोशिश की है? चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको आईपीएल के चक्काचौंध में गुम इन आवाजों से रूबरू कराते हैं। चीयर लीडर्स की अनकही अनसुनी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं।
I'm from Australia. I've come from Manchester in the UK.
Well, I'm from Newcastle, Australia.
I'm from London in England.
From a city called Galway in the west of Ireland.
इस साल 8 टीमों में से 6 टीमों की चीयरलीडर्स विदेशी मूल की रही हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के चीयरलीडर्स देसी मूल के रहे। जब हमने दिल्ली डेयरडेविल्स की चीयरलीडर्स से बातचीत की तो उन्होंने दिल खोलकर कई बातें बताई, जैसे वो इंतजार कर रही थी कि कोई उनकी भी बात करे।
Apart from doing cheerleading, I'm a professional contemporary dancer.
Cheerleader के अलावा पेशे से contemporary dancer हूँ और मैंने 6 महीने मेक्सिको में बतौर contemporary dancer थिएटर में काम किया है।
ये थी ऑस्ट्रेलिया से आई कैथरीन। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रोफेशन में आने के लिए केवल डांस ही एक मापदंड है, तो आपका इंग्लैंड के मैनचेस्टर से आई डेन बेटमैन को सुनना बेहद जरूरी है।
It's really athletic. I remember when I was like young, when I got dropped.
Cheerleading कोई मजाक नहीं है, बल्कि मेरी नजर में एक स्पोर्ट्स है। मुझे याद है, एक बार मैंने cheerleading के दौरान अपनी पसलियां तोड़वा ली थी। विदेशों में सिर्फ डांस नहीं, बल्कि आपको फॉर्मेशंस भी बनाने होते हैं। ये एक स्पोर्ट्स है।
Cheerleading का कल्चर अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यूरोप में भी होने वाले खेलों में इसका चलन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीयरलीडिंग की शुरुआत अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में हुई थी और इसकी शुरुआत किसी महिला ने नहीं की थी बल्कि पुरुष ने की थी, जिनका नाम था जॉन कैम्बेल। यही नहीं, जो चीयर स्क्वाड उन्होंने बनाया था उसमें सब पुरुष थे। हालांकि 1940 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुरुषों को युद्ध के लिए सीमा पर जाना पड़ा था, जिसके बाद महिलाओं की बतौर चीयरलीडर्स भर्ती होने लगी। खैर, इतिहास से आपको वर्तमान में वापस लेकर आते हैं और अब बात करते हैं चीयरलीडर्स की आमदनी की। आखिरकार इनकी सैलरी कितनी होती है? हमने इनकी एजेंसी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि आईपीएल में विदेशी मूल की चीयरलीडर लगभग 2000 पाउंड्स यानी कि 1.25 लाख रुपए हर महीने कमाती हैं। जब हमने चीयरलीडर्स से उनके वेतन को लेकर उनकी राय जानी तो दिल्ली डेयरडेविल्स की चीयरलीडर एले ने कहा कि जितनी मेहनत वो करती हैं और जिस देश से वो आती हैं उस हिसाब से वो सैलरी से असंतुष्ट हैं।
As a dancer in general,
बतौर चीयर लीडर आप जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से पैसे उतने नहीं मिलते, लेकिन मेरी नजर में डांस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है।
लेकिन इन सब के बीच जरा सुनिए आईपीएल के दर्शकों को चीयर लीडर्स क्या नसीहत दे रही हैं।
Just be aware that sometimes, like when we're up there dancing.
एक नसीहत मैं जरूर देना चाहूंगी कि जब हम डांस करते हैं स्टेज पर तो हमें एक मांस का टुकड़ा समझकर ना देखा जाए। चीयरलीडिंग हमारा पेशा है, हम लड़कियां हैं, कोई भोग विलास का सामान नहीं।
तो ये है आयरलैंड से आई डराग, आईपीएल की चीयरलीडर्स की ये दास्तां। आशा है उनकी सूरत से ज्यादा उनकी सीरत को समझा पाने में कामयाब हुई होगी।
वक्त है आपकी राय का।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ स्टूडियो में मैं हूं राजेश प्रियदर्शी।
और मैं हूं सरोज सिंह।
जी सरोज जी, शुरू करिए सिलसिला। मैं देख रहा हूं आपके पास कुछ पोस्ट कार्ड्स भी हैं, वहीं से शुरू करते हैं।
हाँ, सबसे पहला पोस्ट कार्ड जो मैं पढ़ रही हूँ वो है उत्तर प्रदेश रामपुर से। असद अली साहब ने लिखा है गेहूँ की फसल के बारे में, वो पक गई है, कटाई शुरू हो गई है, युद्ध स्तर पर हो रही है, लेकिन सरकार ने गेहूँ का जो समर्थन मूल्य है वो 1735 रुपये प्रति कुंटल रखा है। इसको लेकर इनकी नाराज़गी है। वो चाहते हैं कि ऐसी कोई कहानी भी हम करें अपने रेडियो पर, ऑनलाइन पीस पर, जिसमें किसान का दर्द बयां हो।
बहुत शुक्रिया ये पत्र लिखने के लिए और हमें बताने के लिए। और हम ये जानते हैं कि जो ग्रामीण अंचल में जो किसान हैं, जो खेती का काम करते हैं, ऐसे लोग जो भारत का टेलीविज़न मीडिया है उसके दायरे से बाहर हैं, उनकी आवाज़, उनका दुख दर्द, उनकी तकलीफ़, उनके मुद्दे अक्सर एक तरह से दरकिनार कर दिए जाते हैं या दरकिनार हो जाते हैं। हमारी कोशिश ज़रूर होगी कि हमारे जो देश के किसान हैं उनके जो भी मुद्दे हैं उसकी खबरें हम जैसे जैसे मौका मिले हम आपको सुनवाते रहें। ऐसे बहुत सारे किसानों की बात लेकर कई लोग राष्ट्रपति भवन आज पहुंचे थे, तो जब जब हमें मौका मिलता है हम ऐसी रिपोर्टिंग करने की कोशिश ज़रूर करते हैं।
इसके अलावा जो अगला पत्र है वो हरि बिलास सिंह तोमर लिखते हैं और मुरैना से हैं ये। उन्होंने लिखा, 12 मई को शनिवार को जो इंडिया बोल का कार्यक्रम था उसका विषय इन्हें बहुत भ्रामक लगा। वो लिखते हैं, ये तो सर्वविदित है कि फौज को हमेशा राजनीति से दूर रखना चाहिए एवं देश भर के श्रोताओं की यही राय भी है, लेकिन मोदी जी का आशय ये नहीं था।
तो आप हमारे कार्यक्रम के विषय को क्यों भ्रामक कह रहे हैं ये मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, और ये लोकतांत्रिक देश की ये परंपरा रही है कि सेना को राजनीतिक बयानों में और सेना को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने से लोग परहेज करते रहे, क्योंकि उसका एक अलग दर्जा है, उसका एक अलग स्थान है, और वो उसको राजनीति में नहीं लाया जाना चाहिए। लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, एक और चीज़ है, बहुत ज़रूरी बात है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले देश हैं उसके जो असैनिक मामले हैं उनमें भी सेना के लोगों की कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, एक तरह की परंपरा रही है। ये परंपरा भी लगातार टूटती दिख रही है, जब जनरल रावत लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक मेजर स्तर के अधिकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति दी गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कश्मीर में जीप पर एक व्यक्ति को क्यों बांधा था। तो इस तरह की बहुत सारी परंपराएँ हैं जो टूटी हैं पिछले कुछ समय में, और ये मौका था हमें इस बात पर विचार करने का कि जो देश का जो नागरिक नेतृत्व है, जो लोकतांत्रिक नेतृत्व है, उसमें और सेना में कैसे रिश्ते होने चाहिए, और वो जो दूरी है वो मिट रही है, उसके क्या मायने हैं।
अगला जो खत है वो लिखा है मुश्ताक अहमद आरजू ने, नबी नगर औरंगाबाद बिहार से लिखते हैं। यहाँ जो मुद्दे की बात वो कहना चाहते हैं अपने पत्र के ज़रिए वो ये है कि सभी कार्यक्रम अच्छे तो लगते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जीवन मूल्यों से संबंधित एक प्रोग्राम हम प्रस्तुत करें जो प्रेरक प्रसंगों पर आधारित हो।
बहुत शुक्रिया। अलग से ऐसा कोई कार्यक्रम तो हम क्या ही शुरू करें, क्योंकि फिर वो एक तरह की मजबूरी बनेगी कि हम हर बार ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रहे हों या ज़बरदस्ती कर रहे हों। लेकिन जब कभी ऐसी कोई खबर आती है जिसमें हमें लगता है कि कोई ऐसी बात है जिससे लोगों को अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मिल सकती है, हम उसका प्रसारण अवश्य करते हैं।
अगला जो ईमेल है वो मुर्शीद हैदर चौधरी साहब का है, और उन्हें डैनी साहब पर जो लिखा राजेश जोशी ने वो पीस बहुत पसंद आया, उनसे बातचीत बहुत पसंद आई, लेकिन वो कोबरा पोस्ट के एक्सपोजर पर भी बातचीत चाहते हैं हमारे प्रोग्राम पर।
कोबरा पोस्ट के एक्सपोजर के बारे में और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं कि उनको ये खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं दिखाई दे रही, उसकी बहुत बड़ी वजह कानूनी है, और साथ में अगर आप गौर से देखें तो ये साबित करना बहुत मुश्किल है कि पैसे का लेन देन हुआ, कोई कानूनन कोई अपराध हुआ, या पैसे के लेन देन की वजह से कोई ऐसी सामग्री प्रसारित या प्रकाशित हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब उसके बारे में जो राष्ट्रीय चिंता है और उसकी जो गंभीरता है उससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, वो एक गंभीर मुद्दा है, और इसी वजह से हमने देश के वरिष्ठ और जाने माने पत्रकार कमर वहीद नकवी से एक इसी मामले पर एक टिप्पणी लिखने को कहा। हम लगातार ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह इसको कानूनन और सही निष्पक्ष संतुलित तरीके से इसकी रिपोर्टिंग कर सकें। बहुत शुक्रिया आपकी चिट्ठियों के लिए, और चलते चलते मैं आपको पता बता दूं, अगर आप डाक से चिट्ठी भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। आज भारत के 10 राज्यों में 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के तहत वोट डाले गए। इस बीच कुछ जगहों से ईवीएम खराब होने की भी शिकायतें आई। तमिलनाडु सरकार ने देश के सबसे बड़े तांबा खनन संयंत्र को स्थायी तौर पर बंद करने के आदेश दिए हैं। कुछ ही दिन पहले तूतीकोरिन में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी। किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात की तैयारी के लिए उत्तर कोरिया और अमरीका के अधिकारी लगातार दूसरे दिन वार्ता कर रहे हैं। पेरिस में चौथी मंजिल से लटके बच्चे को बचाने वाले माली के एक प्रवासी को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नागरिकता का प्रस्ताव दिया है। बीबीसी समाचार।
साथ इसी के साथ दिनभर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया कपिल ने, और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया अभिमन्यु साहा ने। कार्यक्रम सुन रहे थे आप मुझसे यानी कुलदीप मिश्र से। नमस्कार।